मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं हिंदुत्व पर कुछ आप सबसे बातें करूंगा, जिसकी शुरुआत मैंने कल की थी। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी एक दूसरी बात करना चाहूंगा, और ये बड़ी विचित्र सी बात है। मेरे पास आज कोई भी दूसरी खबर नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि फिर सीधे सीधे मुख्य विषय पर ही आप क्यों नहीं आते हैं। मैं थोड़ा सा इसे स्पष्ट करना चाहूंगा, जो आपके इनफैक्ट सच पूछिए तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ भी है। देखिए, जब मैं आपको डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड करता हूं तो इसकी एक टाइमिंग है, एक आइडियल टाइम है। इसका जो ड्यूरेशन होगा वो लगभग 12 मिनट से लेकर के 13, 14, 15 मिनट के आसपास होता है। ये इसकी समयावधि है। मैं इसके लिए मजबूर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं इस समयावधि को पूरा करने की कोशिश करता हूं। लेकिन जब मैं कोशिश करता हूं तो आप विश्वास कीजिए कि मैं भर्ती की कोई भी चीज इसमें नहीं डालता हूं। यदि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आज तो कोई खबर है ही नहीं कि मैं उसके बारे में आप सबसे चर्चा करूं, तो मैं उसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करता। मैं भर्ती की खबरें आपको देना पसंद नहीं करता हूं। मेरे पास बातें करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत से विषय हैं, उनकी कमी नहीं है। आप कह सकते हैं कि सर फिर तो अखबार क्यों छपते हैं, दूरदर्शन की खबरें क्यों आती हैं, उनमें तो एक सेकंड की भी कटौती नहीं होती है। रेडियो न्यूज भी बकायदे 15 मिनट का आता ही आता है, और आप कह रहे हैं कि उनमें से कुछ है ही नहीं। अगर आपका ये सवाल है तो ये भी बिल्कुल सही सवाल है। दोस्तों, वो जो खबरें देते हैं उनका जो दायरा है वो बहुत विस्तृत दायरा है, पूरी दुनिया का दायरा है। तो बिल्कुल वो जितने पेज उनके लिए निर्धारित हैं उतने पेज के समाचार उनको मिल जाएंगे। जितना वक्त दूरदर्शन को चाहिए अपने समाचार के लिए, रेडियो को चाहिए अपने समाचार के लिए, वो वक्त भरने के लिए उनको जितनी खबरें चाहिए वो अवेलेबल है। उनको तो छांटना पड़ता है, डेफिनेटली छांटना मुझे भी पड़ता है, लेकिन जो मेरा दायरा है वो सीमित है। उसी माँ क्या है, उसी माँ आपका सिलेबस है। सीधी सी बात है कि मुझे उस सिलेबस के दायरे में सोचना पड़ता है कि आज जो खबरें मेरे सामने हैं, चाहे वो रेडियो न्यूज के रूप में है, दूरदर्शन न्यूज के रूप में है, अखबारों के रूप में है, उनमें से वे खबरें कौन सी हैं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए। और यदि मुझे लगता है कि नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है, तो फिर मैं इसे अपनी ईमानदारी समझता हूं। और यदि मुझे लगता है कि नहीं, इसमें तो कोई ऐसी खबर है ही नहीं जिसके बारे में आपको बताया जाए, तो फिर मैं उसे नहीं लेता। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप इसे अपनी आदत मत बना लीजिए कि आज का आप अखबार पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ चीजें तो आपके लिए होनी ही चाहिए। मुझे लगता है कि यह तैयारी करने का सही तरीका नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए आपने महसूस किया होगा कि कई दिन ऐसे होते हैं जब हम किसी भी खबर के बारे में कोई बात नहीं कर रहे होते। हाँ, अगर पिछली कोई खबर है, बची हुई है, उसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। जैसे कि आज ही जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वो पहले की खबर है, राइट? तो दोस्तों, मैं बात करने अब जा रहा हूं कि हिंदुत्व क्या है, और इसकी पृष्ठभूमि मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से पुनर्नामकरण आयोग बनाने की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने वह जनहित याचिका खारिज कर दी। जनहित याचिका को खारिज करते समय जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं वही मेरे आज के विषय का केंद्र है। तो पहले हम थोड़े से सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं आइए उन्हें देख लेते हैं। ये हिंदुत्व से अलग नहीं है, लेकिन मैं उनके शब्दों को जानबूझकर आपके सामने रख रहा हूं। दो कारण हैं। पहला तो ये कि अगर आप ठीक समझे तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं कोट करने के लिए, उदाहरण देने के लिए, या हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये कोट करने के लायक तो नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में जो बातें चल रही थी आप उन्हें ज्यों का त्यों जान सके, फिर आप उसे खुद अपने ढंग से ढालने में सक्षम हो सकेंगे, राइट? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो अखबारों में छपी, मैं वही बात आपके सामने केवल लाने की स्थिति में हूं। आक्रांताओं के इतिहास को खोदकर वर्तमान और भविष्य के सामने हम नहीं रख सकते। कोई देश अतीत का गुलाम नहीं रह सकता, हमें आगे बढ़ना है। देखिए उन्होंने कहा कि आक्रांताओं के इतिहास को, जब हम पुनर्नामकरण आयोग की बात करते हैं तो उसमें यही होता है कि भाई भारत का अपना इतिहास है, भारत में रहने वाले लोग हैं, लेकिन बाद में विदेशी भारत में आए अगर धर्म की दृष्टि से आप कहें तो दो धर्म के लोग आए, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ईसाई। और अगर हम उस तरह से विदेशी लोगों की बात करें तो शक, हूड़, कुषाण प्राचीनतम समय में आए, और इसके बाद फिर चलिए मध्यकाल में फिर दूसरे विदेशी आते रहे, राइट। तो इन्हें आप आक्रांता मान लीजिए, विदेशी आक्रमणकारी मान लीजिए, विदेशी सत्ता वाले लोग मान लीजिए, जो भी आप नाम देना चाहें। तो ठीक है, ये हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। जब आप खोद खोद कर निकालेंगे तो फिर क्या निकालेंगे? डेफिनेटली उनकी जो बुरी बातें हैं, जो हमें स्वीकार्य नहीं है, जिनसे हमें दुख पहुंचता है, हम जिसे अपने लिए गलत मानते हैं, जिनसे हमें आघात लगता है, हम उन्हीं बातों को खोद कर निकालेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सामने नहीं रख सकते, हम अतीत के गुलाम नहीं रह सकते, क्योंकि वो हमारा इतिहास है और हम उससे बच भी कैसे सकते हैं, क्योंकि वो हमारा हिस्सा रहा है। फिर देखिए कि आगे कोर्ट क्या कहता है। कोर्ट ने कहा, देखिए कोर्ट का जो दायरा होगा वो क्या होगा, आप अपने दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखिए, क्योंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। कोर्ट के जो सोच का दायरा होगा वो क्या होगा? हमारा संविधान, भारतीय संविधान इस मायने में पंथ निरपेक्षता की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है, तो कोर्ट उसी दायरे में बात करेगा, है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कहता है, हमारा देश धर्म निरपेक्ष है और हिंदू धर्म जीवन जीने का तरीका है। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, हिंदू धर्म जीवन जीने का तरीका है, इसमें कट्टरता नहीं है। इतिहास मौजूदा और भावी पीढ़ी को डराने वाला नहीं होना चाहिए। प्राचीन काल में केरल के हिंदू राजाओं ने चर्च के लिए जमीन दी थी। देश का इतिहास समझें, ये मुद्दे जिंदा रखकर आप चाहते हैं कि देश उबलता रहे। जब याचिका दायर की गई थी तो उस याचिका में बकायदे एक वर्ग विशेष को या एक धर्म के मानने वालों को आक्रांता बताया गया था, बर्बर बताया गया था। उसके बारे में देखिए कोर्ट ने क्या कहा है कि आपने अपनी याचिका में समुदाय विशेष को बर्बर बताया है, पर हमें संविधान और सभी वर्गों की रक्षा करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि धर्म का सड़कों के नाम से कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसी याचिका से उन बातों को फिर शुरू करना चाहते हैं जिन्हें दबाना या भुला देना उचित है। अतीत को ऐसे मत कुरेदिए जो अशांति पैदा करे, ये उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कोर्ट का, जो अखबारों में छपा है, और इस पर आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट लाइंस लगे आपको उन्हें आपको नोट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके आंसर राइटिंग में भी काम में आने वाला है, ये आपके पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसमें भी धर्मनिरपेक्षता को व्याख्यायित करने में काम में आने वाला है, ये फर्स्ट आपके जनरल स्टडीज के पेपर में जो सोशियोलॉजी का जो हिस्सा होता है सोसाइटी का, उसमें भी ये काम आ सकता है, और फोर्थ पेपर में जो आपका एथिक्स का है उसमें भी ये काम आने वाला है। तो इसको आप एक मल्टीपर्पज मानकर चल सकते हैं। दोस्तों, जो संविधान पीठ थी उसी में एक न्यायमूर्ति थे, के एम जोसेफ, उनके शब्दों को मैं विशेष रूप से रख रहा हूं, और इसके पीछे बहुत स्पष्ट कारण है। उन्होंने मेंशन किया है, जोसेफ नाम से आप समझ गए होंगे कि ये ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं। देखिए वो किस रूप में हिंदुत्व को देखते हैं, हिंदू धर्म को देखते हैं, और इसका उन्होंने खुद उल्लेख भी किया है। आप ये मत समझिएगा कि मैं अपनी ओर से कोई बात कह रहा हूं, नॉट एट ऑल। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा, अगर वो धर्म कह रहे हैं तो संख्या की दृष्टि से नहीं है, याद रखिए, संख्या की दृष्टि से हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म नहीं है, है ना, ऊंचाई की दृष्टि से, उदारता की दृष्टि से, है ना, हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है। उपनिषदों, वेदों और श्रीमद् भगवद गीता ने इसे जो ऊंचाई दी है वह युगों युगों फैली है, वह किसी अन्य धर्म परंपरा में संभव नहीं। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। हिंदू धर्म की महानता ही उसे उदार बनाती है। इस महान परंपरा और धर्म को कमतर नहीं आंकना चाहिए। मैं ईसाई हूं पर हिंदू धर्म का उतना ही प्रशंसक हूं। देखिए, मैं ईसाई हूं पर हिंदू धर्म का उतना ही प्रशंसक हूं। दोस्तों, ये कोर्ट के कहे गए कुछ शब्द हैं, और भी हैं लेकिन उन्हें मैं जानबूझ करके आपके सामने नहीं रख रहा हूं, क्योंकि वक्त की एक सीमा है। अब मैं आपके सामने फिर से एक उदाहरण रख रहा हूं, कोर्ट का ही डिसीजन है। ये डिसीजन 1966 में आया था, और मुझे लगता है कि ये आपको नोट कर लेना चाहिए या आपको मालूम होना चाहिए। शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस मूल दास भूर दास वैश्य एवं अन्य, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था 1966 में। इसे और थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, मैं व्याख्या नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि बातें थोड़ी सी लंबी हैं, मूल रूप में ही मैं चीजों को आपके सामने पेश कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब हम हिंदू धर्म के बारे में सोचते हैं तो हमें हिंदू धर्म को परिभाषित करने में कठिनाई का अनुभव होता है। विश्व के अन्य धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म किसी एक दूत को नहीं मानता, किसी एक ईश्वर की पूजा नहीं करता, किसी एक मत का अनुयायी नहीं है, यह किसी एक दार्शनिक विचारधारा को नहीं मानता, यह किसी एक प्रकार की धार्मिक पूजा पद्धति या रीति रिवाज को नहीं मानता, यह किसी एक धर्म या संप्रदाय को संतुष्ट नहीं करता है। व्यापक रूप में हम इसे एक जीवन पद्धति के रूप में ही परिभाषित कर सकते हैं, यह इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं इस वाक्य को रिपीट कर रहा हूं, व्यापक रूप में हम इसे एक जीवन पद्धति के रूप में ही परिभाषित कर सकते हैं, यह इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैंने शुरू में जो शब्द कहे थे याद करने की कोशिश कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जो शब्द अभी जो उन्होंने कहे उसमें भी उन्होंने यही कहा कि यह मूलतः एक जीवन पद्धति है। दोस्तों, मुझे लगता है कि जो बातें मैंने आज आपके सामने रखी हैं इन पर आप थोड़ा सा विचार कीजिए। यदि आपका एक ग्रुप हो डिस्कशन करने वाला तो उस ग्रुप में आप इस पर डिस्कशन करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी नई नई चीजें आपको पता लगेंगी। इसके माध्यम से आपके इतिहास की भी तैयारी होगी, इसके माध्यम से आपके समाजशास्त्र की भी तैयारी होगी, इसके माध्यम से सच पूछे तो कहीं ना कहीं राजनीति की भी तैयारी हो जाएगी और ये कम बड़ी बात नहीं होगी। अलग अलग एंगल से आप इसे देखने और समझने की कोशिश कीजिए, आपको मजा भी आएगा। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हम लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेज है 26 अक्टूबर से शुरू होंगी 15 दिन के लिए। इस क्लासेस के लिए दो स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, इनमें एक हैं सुनील ब्रजकिशोर गोस्वामी जो ठाणे महाराष्ट्र से हैं, और दूसरे स्टूडेंट हैं रविंद्र, आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं। तो सुनील और रविंद्र, आप दोनों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। दोस्तों, दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब दूसरे विषयों पर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, नमस्कार।